ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। सरकार ने आज लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसका मकसद विदेश से अंशदान हासिल करने को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वैध तरीके से काम करने वाली संस्थाओं के लिए कोई बाधा पैदा नहीं होगी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भारत की संप्रभुता और देशहित के अनुरूप काम नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन के कार्य संचालन के नियम 72(1) के तहत विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल ने दावा किया कि ये विधेयक समाज के हित में काम करने वाली संस्थाओं के लिए खतरनाक है। राय ने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य वैध गतिविधियों को बाधित करना नहीं, बल्कि विदेशी अंशदान की प्रक्रिया को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता और देश हित में काम करने वाले संस्थानों के कार्यों में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत काम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तृणमूल सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी नीयत में खोट होगी उनके लिए ये विधेयक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो विदेशी अंशदान के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और निजी लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए ये विधेयक खतरनाक है। वहीं लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की। सीतारामन ने कहा कि पहले की तरह मजबूरी में सुधार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने पर काम किया गया है ताकि ईमानदार करदाताओं को कठिनाई न हो। सीतारामन ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जीवन यापन की सुगमता ईज ऑफ लिविंग और कारोबार की सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मजाक बनाया, लेकिन सरकार इन दोनों पहलुओं पर लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई, किसानों और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं क्योंकि ये देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। वित्त विधेयक इन्हें सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री का कहना था कि भारत को वैश्विक व्यावसायिक केंद्र बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सीतारामन ने कहा कि वित्त विधेयक में मध्य वर्ग के लिए बहुत कुछ है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने आम जनता की मदद के लिए 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं की बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उपकर और अधिभार के माध्यम से जितने राजस्व का संग्रह किया गया उससे कहीं अधिक राज्यों को विभिन्न मद में भेजा गया। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 17 अरब डॉलर डेटा सेंटर के निवेश के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने तेल बॉन्ड जारी किए और मोदी सरकार उसे आज तक भर रही है। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों प्रदेशों की सरकारों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार महिला विरोधी है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। लोकसभा में विधायी कार्य आगे बढ़ाते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई, जिसे विपक्षी दलों ने अपर्याप्त प्रावधान बताते हुए इसे मजबूत करने की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विधेयक से देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जब कोई कंपनी दिवाला हो जाती है तो उसके कर्मचारी और निवेशकों के परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए उन कामगारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है और उन्हें राहत देने की प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक को चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने का इस सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वे जनता के पैसे पर मौज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर संकट आ गया है। कांग्रेस सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि भगोड़े कारोबारियों पर कितने मुकदमे किए हैं और ऐसे लोगों को देश में वापस कब लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 52 बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं। भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक से रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठाकुर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपनियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान कभी भी बैंकों का संपत्ति गुणवत्ता मूल्यांकन नहीं किया गया और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बही खाता सही करने का काम किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2004 से पहले सकल और गैर निष्पादित आस्तियां एनपीए 16% थीं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने घटाकर 7.8% किया और फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इसे 12.3% पर छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसे घटाकर 2.3% पर लाया है। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता कानून 2016 लाने के बाद एनपीए की 50% बरामदगी की और बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग एनपीए की बात करते हैं जिनके पास जनसांख्यिकीय इतिहास का सबसे बड़ा एनपीए है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि हम 10 साल बाद कानून में संशोधन करने वाले हैं। प्रवर समिति ने पिछले 3 साल में सभी हितधारकों से बात कर रिपोर्ट दी है। उन्होंने उल्लेख किया कि विधेयक में ये नया सुधार जोड़ा गया है कि न्यायालय जाने से पहले उसके बाहर ही समाधान कैसे किया जाए। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी सपा के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक छोटे व्यापारियों, किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच भेद पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि 2016 में पहली बार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के माध्यम से इस संबंध में कानून लाया गया था और उस वक्त सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि बैंकों का एक एक पैसा वापस दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा सांसद ने कहा कि ये विधेयक आर्थिक असमानता बढ़ा सकता है और बैंकों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी कहा कि दिवाला से संबंधित कानून 2016 में पहली बार लाया गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआती 3 साल में कानून के अच्छे परिणाम सामने आए और दिवाला शोधन में भारत की वैश्विक रैंकिंग 136 से 57 पर पहुंची, लेकिन अब संहिता काम नहीं कर रही। राय ने कहा कि बाद में संशोधन विधेयक लाया गया जो प्रवर समिति को भेजा गया और समिति की विस्तृत रिपोर्ट के बाद ये विधेयक सदन में लाया गया है, लेकिन अब भी इसे लेकर कुछ चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि आईबीसी के लिए अब उत्साह नहीं है और इसका मूल कारण राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण एनसीएलटी में मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाना है। राय ने कहा कि संशोधन विधेयक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, इसलिए प्रस्तावित कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया तथा सरकार ने आश्वासन दिया कि इस समुदाय के लोगों की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। उच्च सदन में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने उभयलिंगी समुदाय के लोगों के कल्याण को लेकर समान रूप से चिंता जताई। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि उनकी न्याय की पुकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के सभी लोगों के उत्थान और उन्हें आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2019 में उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए एक कानून लाया गया था और अब यह संशोधन विधेयक जटिल प्रावधानों में बदलाव कर उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया गया है। मंत्री ने कहा कि इस कानून का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक समुदाय के एक विशिष्ट वर्ग में ऐसी असुरक्षा का समाधान करने के लिए लाया गया है जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं और जिनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। कुमार ने उल्लेख किया कि एक दशक पूर्व उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि उभयलिंगी लोगों की पहचान को मान्यता न देना संविधान का हनन है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से पहली बार दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। किसी बच्चे को उभयलिंगी के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना अब दंडनीय अपराध होगा। मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में बच्चों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित कानून स्पष्ट संदेश देता है कि समाज बच्चों के साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार को सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसके कानून का रूप लेने से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, समुदाय के अधिकार सुनिश्चित होंगे और उभयलिंगी लोगों को सामाजिक मान्यता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार इस समुदाय के सामाजिक समावेशन के लिए विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी, द्रमुक के तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, संदीप कुमार पाठक, स्वाति मालीवाल, बीजू जनता दल के शुभाशीष खूंटिया, सुलता देव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की फौजिया खान, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी, भाजपा के भीम सिंह, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुभाष बराला, डॉ परमार जसवंत सिंह, सालम सिंह, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, वाईएसआर कांग्रेस के गोला बाबूराव, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, सपा की जया बच्चन ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद सदन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। भोजनावकाश के बाद विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किया गया और सदन ने इस संबंध में विपक्ष के नोटिस को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ये विधेयक 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अलग अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा तंत्र की जगह विभिन्न सीएपीएफ बलों में कर्मियों को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बलों के कर्तव्य, शक्तियां और शासन उनके मौजूदा जनादेश के तहत बरकरार रहेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के विधायी अधिकार का जोरदार बचाव किया और कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। विपक्षी सदस्य इस बात पर बल दे रहे थे कि यह विधेयक न्यायालय में खारिज हो जाएगा। रिजिजू ने कहा कि हम इस सदन की विधायी क्षमता कैसे छीन सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आसन से अनुरोध किया कि इस विधेयक के खिलाफ नोटिस देने वाले प्रत्येक सदस्य को 3 से 4 मिनट तक बोलने का अवसर दिया जाए। उपसभापति हरिवंश ने प्रत्येक सदस्य को 1 मिनट की अनुमति दी। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए कहा कि वे इस 1 मिनट का उपयोग चुप रहकर करेंगे। कांग्रेस के अजय माकन ने विधेयक का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय के 6 फैसलों का हवाला दिया और विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसके कार्यान्वयन के वित्तीय बोझ को रेखांकित किया। इसी पार्टी के विवेक तनखा ने तर्क दिया कि इस विधेयक से लगभग 13,000 सेवा अधिकारियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के खत्म होने का जोखिम है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों को रद्द करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने अर्धसैनिक बलों में आईपीएस प्रतिनियुक्तियों को कम कर दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रटास ने तर्क दिया कि इस विधेयक में विधायी दक्षता का स्पष्ट अभाव है। बाद में सदन ने विपक्ष के नोटिसों को खारिज करते हुए इस विधेयक को पेश करने को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले शून्यकाल में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति सांसद को हर वर्ष मिलने वाली 5 करोड़ रुपए की राशि काफी कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। एमपी लैंड्स के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों पर केंद्रित विकास कार्यों की सिफारिश के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। तिवारी ने एमपी लैंड्स योजना को सांसदों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन से इस पर निर्णय लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। कांग्रेस के ही नीरज डांगी ने देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की जरूरत रेखांकित की ताकि देश गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सके। भाजपा के धनंजय भीमराव महादिक, राम भाई मुकारिया, राधामोहन दास अग्रवाल, बालयोगी उमेश नाथ, गीता उर्फ चंद्रप्रभा और रेखा शर्मा, धर्मशीला गुप्ता, जग्गेश और पाका वेंकट सत्यनारायण, कांग्रेस की रंजीत रंजन, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।